कायरव का नॉर्मल रिएक्शन देखकर इनाया भी नॉर्मल हो गई और कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने रखने लगी। अगर तुम्हारी खुशी हमारे नहीं किसी और के साथ हुई तब क्या करोगे तुम? मैं अपनी खुशी के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकता, कायरव सीरियस था। इनाया ने तुरंत ही अगला सवाल किया, लेकिन उस जिम्मेदारी में तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी और जब तुम खुद खुश नहीं रहोगे तो हमें कैसे खुश रखोगे? इससे अच्छा तो होगा कि हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएं। इसकी फ्रीडम होगी तुम्हें, ये राइट होगा तुम्हारे पास कि फाइनल डिसीजन तुम ले सको, पर तब भी मैं तुम्हारी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। उस बच्चे को मेरा नाम मिलेगा और अगर मैं अपने बच्चे के साथ तुमसे दूर जाना चाहूँ, उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहूँ तो नहीं रोकूंगा तुम्हें, पर एक बच्चे के साथ जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? तुम्हारी दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। मतलब ये कि अगर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को वो खुशियां नहीं दे पा रहा जो तुम दोनों डिजर्व करते हो, तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर जाकर तुम दोनों ज्यादा खुश रहोगे, और तुम मुझसे दूर गई तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी और हमारे बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा। तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा पर खबर सब रखूंगा, और जरूरत पड़ने पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। इन सब के अलावा एक प्रॉमिस और करता हूँ आज मैं तुम्हें, अगर हमारी शादी होती है तो इस मैरिज के एक कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी लड़की कभी नहीं आएगी। हम साथ रहें या ना रहें, पर जब जब मेरी वाइफ का जिक्र होगा वहां तुम्हारा ही नाम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन हम दोनों के होंगे, तो इस रिश्ते से जुड़ा डिसीजन हम दोनों मिलकर लेंगे, चाहे वो अलग होने का हो या साथ रहने का। इनाया शॉक थी और फटी आंखों से टकटकी लगाए उसे देखे जा रही थी। क्या सच में कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है? इनाया ने दिमाग में यही सवाल आया और इसके साथ ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे बनने का नाटक नहीं कर रहे? भौं से कोड़े इनाया गहरी निगाहों से उसे घूरने लगी। कायरव के लब हल्के से खिंच गए। नाटक है या हकीकत ये तो तुम्हें आजमाने के बाद ही पता चलेगा। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करो, एक साल बिताओ मेरे साथ, उसके बाद देखते हैं कि मेरे बारे में तुम्हारी ये परसेप्शन बदलती है या नहीं। इनाया सोच में पड़ गई। कुछ सेकंड की खामोश के बाद उसके लब घसमसाए और हल्की आवाज बाहर आई, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। ये लो मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, कल सुबह तक मुझे अपना जवाब बता देना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे की प्रेपरेशन करूंगा। वैसे तो मैं सीधे तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी जा सकता हूँ, तब मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा काम भी हो जाएगा, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो हो तुम्हारी मर्जी से हो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, अच्छे से सोचने के बाद कोई डिसीजन लेना। अगर तुम्हारी हाँ होगी तो हम दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तब भी थोड़ी मुश्किलों के बाद ही सही, पर मैं दूसरी लड़की ढूंढ ही लूंगा और मेरा काम बन जाएगा, पर तुम्हारी प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही रह जाएगी। मैं कल सुबह तक तुम्हें अपना जवाब दे दूंगी। गुड, कायरव मुस्कुराया। सीट बेल्ट लगाओ, धूप बहुत है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, दिन का टाइम है, अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया और बात मेरे घर तक पहुंच गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं खुद से चली जाऊंगी, वैसे भी मुझे आदत है, रोज का यही काम है मेरा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इनाया तुरंत मना करके कार से उतरने लगी, पर फिर रुक गई और सवालिया निगाहें कायरव की तरफ घूम गई। क्या हुआ? कायरव ने उसे यूं देखते देखकर सवाल किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मंदिर में हूँ? तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो ना? मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा, पर मेरी नजरें हर पल तुम पर रहती हैं। तुम कब कहाँ होती हो मुझे सब पता होता है, और इसके पीछे मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। तुम अमन की नज़र में आ चुकी हो और वो हर जगह पागलों जैसे तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे तुम्हें अपनी निगाहों के दायरे में रखना पड़ता है। मतलब तुमने मेरे पीछे अपने जासूसों को लगाया हुआ है जो तुम्हें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं? इनाया आंखें भाड़े हैरान परेशान सी उसे देखने लगी। कायरव अब भी बिल्कुल नॉर्मल था। यस, अभी भी तुम्हारे आदमियों की नज़र मुझ पर है। तुम्हारे घर से निकलने के बाद वापस घर जाने तक हर सेकंड उनकी नज़र तुम पर रहती है, और तुम कब क्या करती हो, कहाँ जाती हो, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इतने दिनों में मैं कहाँ कहाँ जॉब के लिए भटकी। ऑफकोर्स, मुझे तुम्हारे बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें पता है। इनाया शॉक थी और अब थोड़ा घबरा भी गई थी। उसने अपनी चील सी नज़र कार से बाहर चारों तरफ घुमाते हुए अगला सवाल किया। तुम्हारे आदमी हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, तुम्हें मेरे बारे में सब बताते रहते हैं, पर मैंने तो कभी किसी सस्पिशियस इंसान को अपने आसपास नहीं देखा। तुम्हारी नज़रों में आए बिना उन्हें काम करने के ऑर्डर मिले हैं, उन्हें तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, पर ऐसे कि ना तुम्हें इसका पता चले और ना किसी और को इसकी खबर हो। यही उनकी ड्यूटी है, जिसे कैसे निभाना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इनाया ने सर घुमाकर कायरव को देखा जो काफी सीरियस नजर आ रहा था। थूक निगलते हुए उसने अपने सूखते गले को तर किया और झिझकते हुए बोली, जितनी भी लड़कियों को तुमने अमन से बचाया है, क्या उन सबकी सेफ्टी के लिए ऐसे ही उनके पीछे अपने आदमी लगाए हुए हैं और ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हो उन्हें? तुम स्पेशल हो, कायरव ने संजीदगी से जवाब दिया। इनाया उसकी आंखों में झांकने लगी। क्यों, मैं स्पेशल क्यों हूँ? क्योंकि तुम मेरी वुड बी वाइफ हो और अमन जान चुका है कि तुमसे मेरा अलग रिलेशन है, तो वो तुम्हें टारगेट करेगा ताकि मुझे हरा सके, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओ, इनाया ने सर हिलाया और बाहर निकलते हुए उसने सहमी निगाहों को चारों तरफ घुमाया और तेज तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल गई। कार में बैठा कायरव उसकी हरकतें देखकर मुस्कुरा उठा। सो क्यूट, उसके होंठ फड़फड़ाए और स्टीयरिंग घुमाते हुए वो वहां से निकल गया। ये तो बहुत डेंजरस है, मुझे कुछ पता ही नहीं और इसके पास मेरे पल पल की खबर पहुंच रही है, मुझे कभी एहसास तक नहीं हुआ। इनाया अब भी खुद में बड़बड़ाते हुए चारों तरफ नजरें घुमाते तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। अचानक ही उसका सर किसी सख्त चीज से टकरा गया। हल्की आह के सर उसने अपने सर को अपनी हथेली से मसलते हुए सर उठाकर देखा। उसके सामने एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था। जिम में बनाई सख्त बॉडी, उस पर बनियान के ऊपर खुली हवाई शर्ट, कटी फटी गंदी सी जीन्स, गले में सोने की मोटी सी चेन, आगे से चेहरे पर दोनों तरफ फैले और पीछे छोटी सी चोटी में बंधे बाल, दोनों हाथ की उंगलियों में सोने की अंगूठियां, धूल से सने पैरों में साधारण सी चप्पल, ये सचिन था जो दांतों के बीच टूथपिक दबाए चमकती आंखों से उसे देख रहा था। इनाया को देखते ही सचिन मुस्कुराया। वहीं इनाया का मन गुस्से से भर गया। इतनी धूप में यहाँ सड़क पर क्या रैली है? तो कितनी बार बोला है अपुन तेरे को, धूप में बाहर मत निकला कर, रंग काला हो जाएगा तेरा। इनाया का चेहरा लाल हो गया और गुस्से से उसने जबड़े भींच लिए। तू होता कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाला? मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, उससे तुझे क्या? समझता क्या है आखिर तू खुद को? किस हक से मुझ पर रोक टोक लगाता है? सोच भी कैसे लिया तूने कि मैं तेरी बात मानकर घर में बंद हो जाऊंगी? रानी, इतना भड़क काहे को रही है? अपुन तो तेरे लिए बोला, धूप में निकलेगी तो तेरा चांद सा गोरा चेहरा काला हो जाएगा।
मैं धूप में निकलूं या रात के अंधेरे में, तेरा इससे कोई मतलब नहीं। मैं काली हूं या नीली पीली, तुझे कोई हक नहीं कुछ भी बोलने का। मेरा चेहरा है ना, तो इसकी चिंता भी मैं खुद कर लूंगी। तू मुझसे और मेरे मामलों से दूर रहा कर, समझ आई बात? इनाया ने जलती निगाहों से उसे घूरा, पर वो अब भी मुस्कुरा रहा था। इनाया ने कदम आगे बढ़ाए पर सचिन ने उसकी कलाई थाम ली। टू बी कंटिन्यूड।